ओम शांति। आज के रात्रि क्लास में आदरणीय भ्राता जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी पिछले 1972 से इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। आपको ये ईश्वरीय ज्ञान यूपी से प्राप्त हुआ। ज्ञान मिलने के एक मास बाद ही आप बाबा के मधुबन बेहद घर में आए और अपना जीवन संपूर्ण रूप से इस यज्ञ में समर्पित कर दिया। आप कई स्थानों पर जाकर योग भटिया कराते रहते हैं क्योंकि योग में आपकी विशेष रुचि है। कई कॉन्फ्रेंसेस में भी आपके प्रवचन होते रहते हैं। वर्तमान समय आप शांतिवन के वीआईपी किचन की सेवाओं को देखते हैं। ऐसे बाबा के विशेष अनुभवी रतन के लिए मैं कुछ कहूंगी। परमात्मा सागर की संतान आप अनुभवों की नदी मैदानी हैं, जिनके मंद मंद बहाव में बहता जल मीठी स्नेही रूहानी है, जिनकी गहराइयों में बाबा की याद के मोती और मुख पर मुस्कान सुहानी है। शीतल उज्जवल देवताई रॉयल्टी और फरिश्तों सी चाल मस्तानी है। ये भ्राता जी के चाल चलन चेहरे से दिखाई देता है। और आज बहुत सुंदर विषय पर आदरणीय भ्राता जी से हम क्लास करेंगे। और आज का विषय है माया जीत, प्रकृति जीत और पुराने संस्कार जीत।
ओम शांति। आप सभी जब से बाबा को जाना है, पहचाना है, निश्चय हुआ है, तब से आपने जीवन का लक्ष्य लिया है कि मुझ आत्मा को बाप समान बनना है। समान बनने का लक्ष्य लेकर हर ब्राह्मण आत्मा चल रही है। समान कैसे बने उसकी विधि बाबा रोज मुरली में बताता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन बात है। वो तीन है माया जीत, प्रकृति जीत और पुराने संस्कार जीत। आप जब सतयुग में होंगे, आप आत्मा के साथ शरीर होगा, लेकिन माया जीत, प्रकृति जीत होंगे उस समय। तो उसका स्वरूप अभी बनना है। अब आत्मा बनेगी तो भविष्य में वो रूप धारण करेगी और सतयुग में पुराने संस्कार नहीं है, वहां से संस्कार आदि रूप से शुरू होता है। तो तीनों पर विजय आत्मा को यही प्राप्त करना है। माया जीत, अब प्रश्न अगर उठता है जीतना है तो इससे सिद्ध है कि आत्मा किसी समय माया पर जीत पाई हुई थी। दूसरे ने फिर माया पर जीत पाने के बजाय माया के अधीन बना दिया। शास्त्रों ने, गुरुओं ने कईयों का आधार बना, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो माया जीत बनने का सुंदर साधन बाबा ने बताया है कि आप अपने को चेक करो कि मुझ आत्मा में माया की प्रवेशता हुई कैसे, जबकि सतयुग में आत्मा शरीर के साथ थी तब माया नहीं थी, और अभी आत्मा शरीर के साथ है तो माया है। क्या कारण बना जो माया प्रवेश हुई? उसका मुख्य कारण है कि सतयुग से आत्मा इस शरीर के साथ रहते रहते पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता के अंत तक ये कॉन्शियस भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। ये कॉन्शियस आ गई कि मैं शरीर हूँ। आत्मा को थोड़ा थोड़ा सतयुग से ही शरीर के संग का रंग लगना शुरू हुआ और त्रेता के अंत तक पूरा प्रभाव पड़ गया। आप मुरली में सुनते हैं कि बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण से श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? जबकि श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, इसलिए महिमा ज्यादा है कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा को आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है। लक्ष्मी नारायण के शरीर में आत्मा को रहते रहते थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, और जितना ज्यादा समय आत्मा शरीर के साथ रहती है तो शरीर का प्रभाव पड़ने के कारण आत्मा की कला कम होती जाती है। नहीं तो आप देखो कि सतयुग में आत्मा जो भी कर्म करती है वो कर्म अकर्म बनता है ना? अकर्म। अकर्म का अर्थ है ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म। ना पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं। तो जब पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं तो आत्मा की कला क्यों कम हुई? जैसे इस समय आप बाबा को याद करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, चढ़ती कला है। द्वापर से हम पाप कर्म करते हैं, गिरती कला है। सतयुग में ना पाप है ना पुण्य है, लेकिन फिर भी कला कम होती है। इसका कारण यही है कि आत्मा शरीर के साथ रहते रहते शरीर का प्रभाव पड़ते पड़ते अपने ओरिजिनल स्वरूप से नीचे आती जाती है। इसलिए सतयुग के अंत तक दो कला कम हो जाती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन उतरती कला में आती है। तो जब सतयुग में आत्मा शरीर के साथ संपन्न थी, संपूर्ण थी, तो बाद में क्यों आया? क्योंकि आत्मा शरीर में ज्यादा समय प्रवेश रही। अब आत्मा को विकारों से मुक्त होना है तो मुख्य एक ही साधन है, इस देह भान से मुक्त हो जाओ। देह भान में आने से पांच विकार आए, देह भान से मुक्त हो जाओ तो पांचों विकार चले जाएंगे। अब देह भान से मुक्त होने के लिए बाबा हमें रोज मुरली में युक्ति दे रहा है, बच्चे ऐसे ऐसे अभ्यास करो। देह भान से मुक्ति का साधन है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, इस अलग होने का अभ्यास और अभ्यास के द्वारा अनुभव हो कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मुझ आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है। इतना न्यारेपन का अनुभव हो तब आप आत्मक स्वरूप में टिक सकते। सिर्फ संकल्प करने से नहीं होगा, ये स्वरूप बनाना पड़ेगा, स्वरूप में स्वयं को टिकाना पड़ेगा। उसकी विधि है, उसकी विधि है जो आत्मा की चार स्टेजस हैं, उन चारों स्टेजस में अपने को लाना, चारों का अभ्यास करना, वो चारों स्टेज है। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। जब ये आत्मा की चारों स्टेजेस का आप अभ्यास करते रहेंगे तब आप आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे। देही अभिमानी और आत्म अभिमानी, विदेही अशरीरी, चारों एक ही है या अलग अलग है? क्या समझती है शक्तियां? एक ही है, अलग अलग? चार शब्द हैं तो अलग जरूर है। देही अभिमानी अर्थात आत्मा कर्म करते हुए इस देह का आधार लेकर कर्म करे, कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर कर्म करे, मैं आत्मा इन कर्म इंद्री के द्वारा कर्म कर रही हूँ। कर्म करते हुए कॉन्शियस आत्मा की रहे, शरीर की नहीं। जब कॉन्शियस आत्मा की रहेगी कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो ये कॉन्शियस शरीर के द्वारा कर्म करते भी शरीर से आपको अलग रखेगी। इस शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं रहेगा। अगर कॉन्शियस नहीं है कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, सिर्फ संकल्प है, तो अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन स्वरूप बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं बिंदु रूप हूँ। जैसे इसका जन्म बाई जन्म लेते लेते इतने लंबे चौड़े स्वरूप का कॉन्शियस बन ही गई है, ये भान रहता ही रहता है मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, ऐसे मैं बिंदी हूँ वो कॉन्शियस बने। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, इससे भी ऊंची स्टेज। जब आत्मा कर्मातीत के नजदीक पहुंच जाएगी, तब आत्मा की क्या स्टेज होगी? ये स्टेज है कर्म करते हुए कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। लेकिन जब कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचेंगे, तब ये स्टेज आ जाएगी कि आत्मा इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर के प्रमाण चला रही है। ऐसा अनुभव होगा कि मैं आत्मा मालिक इस शरीर से अलग इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देकर करा रही हूँ। जैसे गिलास में पानी भरा है, आपको पीना है, एक है मैं आत्मा इन हाथ रूपी कर्म इंद्रियों के द्वारा गिलास उठाकर पानी पी रही हूँ। इससे पावरफुल स्टेज कि आत्मा हाथ को ऑर्डर दे, पानी उठाओ और पिलाओ, मालिकपन, अथॉरिटी, इन शरीर का मालिक हूँ, वो अथॉरिटी की स्थिति वो आएगी कर्मातीत के लिए। पहली है कमल फूल के समान न्यारी स्थिति और दूसरी है गुलाब फूल के समान उपराम स्थिति। स्थिति, न्यारी स्थिति अर्थात जैसे आप सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं तो चिपकता है और छुड़ाते हैं, वो है न्यारा बनाना। बर्तन में है लेकिन चिपक रहा है, आप छुड़ा रहे हो, न्यारे बनाने के पुरुषार्थ में हो, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जब सब्जी बन जाती है तो बर्तन को छोड़ देती है, बर्तन में लेकिन बर्तन से अलग है। उसको अगर किसी बर्तन में पलटो तो तुरंत निकल जाएगी, इतना भी चिपकेगी नहीं। वो स्टेज है उपराम स्टेज, जिसको बाबा ने कहा था गुलाब का फूल, नारी है कमल का फूल, उपराम है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल को देखो, जब पूरा खिल जाता है तो उसको जरा सा ऐसे करो तो सब पत्ते झड़ जाते, सिर्फ क्या बचता है बीच में वो बूर बचता है, बस उतना। तो जो उपराम स्थिति वाला होगा वो इस सब कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हुए, सबके साथ रहते हुए, जैसे किसी के साथ हाई नहीं, कोई उसके लिए हाई नहीं, इसको कहा जाता है उपराम। कहीं क्लास करा रहे थे तो एक ने कहा आजकल तो ऐसा बर्तन आ गया है जिसमें सब्जी चिपकती नहीं है, पता नहीं स्टेनलेस पता नहीं क्या कहते हैं, सब्जी नहीं चिपकती है। तो उसका बहुत सुंदर जवाब बाबा ने दिया था कि अभी ज्ञान योग इतना स्पष्ट हो गया है कि आपको कहीं चिपकना ही नहीं चाहिए। अगर अब कहीं चिपक रहे हैं तो माना आप नया बर्तन जो निकला है चिपकता नहीं है, उसको यूज नहीं कर रहे, उसका फायदा नहीं उठा रहे, इसलिए आप गुलाब के फूल के समान उपराम बनो। दूसरी विशेषता है कि गुलाब के फूल पर कोई कीड़े नहीं बैठते, भंवरा नहीं बैठता है, और सभी फूलों पर बैठते हैं लेकिन गुलाब के फूल पर कोई भंवरा नहीं बैठता, शहद की मक्खी भी नहीं बैठती है। आज तक किसी ने सुना है कि गुलाब का भी शहद होता है? नहीं। अर्थात सबके साथ रहते हुए, सबके साथ हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक सेवा करते हुए एकदम न्यारे, ना मैं किसी की ना मेरा कोई, उसका भी बाबा मेरा भी बाबा, इसको कहा जाता है उपराम स्टेज। तो कर्म में देही अभिमानी, और जब योग में बैठो तब शरीर की जरूरत नहीं है, टोटल शरीर से अलग आत्म अभिमानी, उस समय टोटल आत्मक स्वरूप में स्वयं को स्थित कर लो। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। तो योग में बैठो तो आत्म अभिमानी, चलते फिरते बातचीत करते उठते बैठते आप किसी न किसी सोमान में रहो। सोमान देवभान को मिटा देगा, स्वतः ही विदेही बन जाएंगे। चलते फिरते ते उठते बैठते बातचीत करते आप विदेही अर्थात सोमान में स्वयं को स्थित रखो। जैसा सोमान होगा वैसा संकल्प बोल कर्म स्वतः ही चलेगा। चौथा है अशरीरी, जब आत्मा परम धाम में है तो बिना शरीर के है, अशरीरी है, तो बीच बीच में जब टाइम मिले तो डेड साइलेंस का अभ्यास करो कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा बाबा रहता है जो मेरा सर्वस्व है, मैं यही की रहने वाली हूँ। ऐसे अपने को बाप के सन्मुख स्थित करो। ये बीच बीच में अभ्यास करते रहोगे तो अंत में शरीर छोड़ते समय ये स्थिति बहुत मदद देगी कर्मातीत बनने में। तब आप आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे। तो देह अभिमान मिटाने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए आत्मक स्वरूप की स्थिति। दूसरा है प्रकृति जीत, विकार जीत बनना फिर भी सहज है लेकिन प्रकृति जीत बनने में बहुत सूक्ष्म अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है। पांचों तत्व के बिना ये शरीर एक सेकंड भी चल नहीं सकता है लेकिन पांचों तत्व पर आत्मा विजय प्राप्त करके रहे उसकी जरूरत है। उसकी दो विधि है, एक विधि है प्रकृति की सेवा करो। आप प्रकृति की सेवा करोगे प्रकृति आप की सेवा करेगी, और दूसरा है जो प्रकृति के गुण हैं वो स्वयं में धारण कर लो तो प्रकृति आपके अधीन हो जाएगी। पहली बात है प्रकृति की सेवा करो, कौन सी सेवा करो? प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। जितना इस समय प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करोगे, उतना सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करोगे, अर्थात वन 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 में आओगे। जितना प्रकृति को कम सतो प्रधान बनाने की सेवा करोगे, उतना देर से जन्म होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो तो प्रकृति आपको सुख देगी। जो सतयुग में प्रकृति दासी है, वो ये संगम पर अनुभव होगा। दूसरे के लिए प्रकृति विनाश का रूप लेगी और आपके लिए सुखदाई होगी। अगर प्रकृति की सेवा कर रहे हो तो उदाहरण के रूप में, कुछ समय पहले गुजरात में भूकंप आया था। उसका मुख्य केंद्र था भुज, कच्छ भुज। भुज में भी अपना बाबा का सेंटर था 3 मंजिला। एक बाबा का सेंटर छोड़कर बाकी वहां टोटल विनाश हो गया था। एक भी मकान कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा का सेंटर 3 मंजिला था, वो सेफ था, क्रैक भी नहीं आया था। लेकिन प्रकृति ने सेवा क्या की? वो कच्छ की एरिया है, सागर का किनारा है, वहां मीठा पानी नहीं मिलता है पीने का, पानी दूर से लाना पड़ता था पीने के लिए, टैंकर आता था, गवर्नमेंट देता था। लेकिन जब भूकंप आया तो भूकंप में तो धरती अंदर से हिलती है, तो जो खारे पानी का लेयर था वो चेंज हो करके मीठे पानी का लेयर आ गया। तो उसी दिन से वहां मीठा पानी आना शुरू हो गया। दूसरी जगह प्रकृति ने सबका जान लिया, सबको इतना नुकसान हुआ, और बाबा के घर में मीठा पानी दे गई, जो अभी तक भी चल रहा है मीठा पानी। तो प्रकृति की सेवा करो तो प्रकृति हमारी सेवा करेगी। अब कैसे प्रकृति को सतो प्रधान बनाओ, उसकी विधि है। इस शरीर से अलग होकर 5 तत्वों से अलग स्थिति बनाकर, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, चाहे मूल वतन में शिव बाबा के पास, अपने को स्थित करके फिर वहां से जो वाइब्रेशंस, जो संकल्प करेंगे, उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा और प्रकृति सतो प्रधान होती जाएगी। विधि है स्वयं को प्रकृति से डिटैच करके, देह भान से डिटैच करके, फिर जो आप संकल्प करेंगे वो वाइब्रेशंस के रूप में प्रकृति पर कार्य करेगी, प्रकृति को सतो प्रधान बनाएगी। तो तो एक है प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो, दूसरा प्रकृति के जो गुण हैं वो गुण आप धारण कर लो, उस गुण की धारणा से प्रकृति का वो तत्व आपके अधीन हो जाएगा, आपकी अधीनता में आ जाएगा। जैसे पांच तत्व हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, पांच तत्व से ये शरीर है, ये पांचों तत्व में जो गुण हैं उस गुण को धारण करो। पहला तत्व मान लो जल है, जल की विशेषता क्या है, क्या गुण है जल में जी? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आई। जल की विशेषता दो है, देखना जो आपने बताया वो है। एक विशेषता जल में है कि जल सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, चम्मच में डालो तो भी एडजस्ट है, मटके में डालो तो भी एडजस्ट है, सागर में डालो तो भी एडजस्ट है, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। पानी में कोई भी रंग डालो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो पहली विशेषता है एडजस्ट होने की। हम आत्मा जितना परिवार के साथ एडजस्ट हो जाएंगे उसके लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, सहन शक्ति और उदार चित्त। सहन शक्ति और उदार चित्त, एक तो हमें सहन करना है, कोई हमको उल्टा भला बुरे सब कुछ कहे लेकिन सहन करना है, और उदार चित्त अर्थात फिर उसकी महिमा करनी, वो हमारी ग्लानी करे हम उसकी महिमा करें। आप बहुत अच्छे हो, आप तो भगवान के बच्चे हो, आप तो होवनहार देव आत्मा हो, ये झूठी महिमा नहीं है, सच महिमा है। सिर्फ वो बात उसमें छिपी हुई है, सिर्फ बताना है उसे। तो पहली बात, जल का गुण एडजस्ट हो जाता है। दूसरी बात, निरंतर बहता रहता है, पानी बहता रहता है। आप भी ज्ञान की गंगा बहाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। जितना ज्ञान सुनाओगे उतना धारणा होती जाएगी। किस आधार से सुनाया है? अगर किसी को आप कह दो कि मैं गुस्सा करना छोड़ दिया है, तो अगर अगले दिन परिस्थिति गुस्से वाली आ भी जाए तो भी कंट्रोल कर ही लेंगे, क्योंकि बोला हुआ है। तो कहने से धारणा होती है। दूसरी बात, दूसरे को सुनाएंगे उसके जीवन में जो सुख शांति आएगी उसकी दुआएं मिलेगी आपको, वो दुआएं आपको बहुत मदद देगी। तो ज्ञान गंगा बनकर सदा बहते रहो। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी का विशेष गुण क्या है, क्या गुण है? पृथ्वी का विशेष गुण है पृथ्वी दाता है, देती है। आप जितनी भी चीजें हैं सब पृथ्वी से ही तो मिलता है, फल फूल पौधा खनिज पदार्थ जितने हैं सब कुछ तो पृथ्वी से ही है। तो पृथ्वी देती है, एक गुण है दाता है, दूसरा पृथ्वी का गुण है सहनशील है। गड्ढा खोदो तो भी कुछ नहीं बोलेगी, 100 मंजिल इमारत बना दो तो भी कुछ नहीं बोलेगी, मूर्ति रखो तो भी कुछ नहीं बोलेगी, रावण का पुतला रखो तो भी कुछ नहीं बोलेगी, सहनशील है। तो पृथ्वी के समान पहले दाता बनो। जैसे बाबा आता है तो दाता है, देता है, हमें देना ही है। चाहे प्यार के दो शब्द बोलो, ज्ञान बोलो, दृष्टि दो, स्वभाव बोलो, दृष्टि के द्वारा उसका कल्याण करो, सदा शुभ सोचो, कुछ न कुछ देते रहो, दाता। और दूसरी बात, सहनशील बनो। सहनशील बनने की बहुत सुंदर विधि है कि बीच में बाबा को डाल के रखो तो सहनशीलता आ जाएगी। आप प्रयोग करके देखो, कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा था, इतने में आपको बाबा की याद आ जाए, बाबा की याद में टिक जाओ, गुस्सा रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। तो अगर बीच में बाबा को डाल के रखो तो सहनशीलता आ जाएगी। तीसरी बात है आकाश। आकाश की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है आकाश की? विशेषता है ऊंचा है और पोलार है, खाली है। आकाश ऊंचा है और पोलार अर्थात खाली है। आकाश ऊंचा है अर्थात आपको सदा अपनी ऊंची स्थिति बनाकर रखना है। ऊंची स्थिति अर्थात बाप समान स्थिति। जितना आप अपनी ऊंची स्थिति में स्वयं को स्थित रखोगे, उस ऊंची स्थिति का वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा, मनुष्य आत्माओं पर भी पड़ेगा, जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा, उसका आपको बहुत फल मिलेगा। अगर आप ऊंची स्थिति में रहते हैं और ऊंची स्थिति में रहने के लिए नीचे की बातों से आत्मा को खाली करना पड़ेगा, पोलार अर्थात खाली करना पड़ेगा। जब नीचे की सब बातों से खाली हैं, ऊंची स्थिति में स्थित है, तो अभी विनाश के समय आकाश मार्ग से जो भी विनाश की चीजें आएंगी, चाहे बम आता है, सैटेलाइट, कुछ भी आता है, आपका कुछ नहीं होगा, गारंटी। लेकिन स्थिति चाहिए, वो स्थिति होगी तो। चौथा है अग्नि। अग्नि की विशेषता क्या है? अग्नि की विशेषता है अग्नि जलाती है और रूप बदल देती है। जो रूप पहले होता है जलने के बाद बदल जाता है। आपका देखो ये शरीर है, जब जलाया जाता है तो क्या बचता है? इतनी राख, सब कुछ बदल गया। कोई भी चीज आग में जला दो तो रूप बदल जाता है। तो आग की विशेषता है रूप को बदल देना। तो आपका जो देह अभिमान का रूप है, ये रूप बदल कर आत्मक रूप में टिक जाओ, द्वापर युग कलियुग के संस्कार का रूप चेंज कर अनादि आदि संस्कार वाला रूप धारण कर लो, इसके लिए आपको चाहिए ज्वालामुखी योग। जो सब कुछ जल जाए, एकदम प्योर शुद्ध बाप समान बन जाओ, उसके लिए ज्वालामुखी योग चाहिए। ज्वालामुखी योग की भी चार स्टेजेस है। आपको हाई स्टेजेस तक पहुंचना है। पहला है अंतर्मुखी योग, इस पर विचार आप खुद करना। दूसरा है चंद्रमुखी योग। तीसरा है सूरजमुखी योग। और चौथा है ज्वालामुखी योग। इस पर विचार करना, खुद टाइम नहीं है। तो इन चारों में ज्वालामुखी योग पावरफुल है, उस स्थिति पर आना। और पांचवा है हवा। हवा का विशेष गुण है हवा हल्की होती है और दूसरे को प्राण दान देती है। अगर थोड़ी देर भी हवा बंद हो जाए तो आत्मा इसको छोड़ के चली जाएगी। प्राण दान देती है, एक हल्की होती है, दूसरी प्राण दान देती है। आप हवा के समान हल्के बनो, सब बोझ बाबा कहता मुझे दे दो, देह भान का भी बोझ छोड़ दो, मैं आत्मा डबल लाइट हूं। डबल लाइट की स्थिति में बाप दादा के साथ रहो, एकदम हल्के रहो। और इस स्थिति में स्थित आप जिसको भी दृष्टि देंगे, ज्ञान देंगे, उस आत्मा में जैसे जान आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, बल आ जाएगा। तो ये पांचों तत्वों के पांचों गुणों को धारण करना सार है एक बात की, निरंतर याद रहना। बिना याद के ये आ नहीं सकता है। तो पांचों तत्व के पांचों गुण धारण करो तो पांचों तत्व आपके अधीन हो जाएंगे। और सतयुग में यही आपकी दासी बनकर सेवा करेंगे। अभी आप सेवा करोगे तो विनाश के समय ये तत्व आपकी सेवा करेंगे। गुण धारण करोगे, दासी बनेंगे, ये सतयुग में आपकी दासी बनकर सेवा करेंगे। लास्ट है पुराने संस्कार जीत। पुराना संस्कार जीत बनने का एक ही शब्द है, सदा अपना अनादि और आदि संस्कार स्मृति में रहे कि मैं आत्मा अनादि रूप में परम धाम में जब बाप के पास थी तो कैसी थी। ये जितना स्मृति लाएंगे तो बाप की याद होने के कारण और अनादि संस्कारों की स्मृति के कारण पुराने संस्कार दबते जाएंगे। फिर आदि अर्थात जब मैं आत्मा देव आत्मा थी तब मुझ आत्मा के संस्कार कैसे थे। तो अनादि और आदि इन दोनों संस्कार की स्मृति से पुराने संस्कार सहज जीते जा सकते हैं। तो आत्मा माया जीत, प्रकृति जीत, पुराने संस्कार जीत बनकर बाप समान बनकर बाप के साथ साथ घर चलेगी। अच्छा, ओम शांति।